खुद ही तो अंग है।
तो ये सॉफ्ट है वो हार्ड है,
क्यों है?
ये तो सॉफ्ट,
यही सब ज्ञान करते करते कोटि जी चला जाएगा। कहते हैं कि पृथ्वी की जो बालू कणा को गिन सकते कोई गिन सकता है, ये हो सकता है, किंतु भगवान के इस ज्ञान को था पाना ब्रह्मा के लिए
वो मुश्किल।
इसलिए उस सब कुछ ज्ञान भक्ति के
वो फिर वो भक्ति कैसे
आएंगे? मैं पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में उस रसिक वैष्णव के चरण में मैं कुछ नहीं जानती
करे। हाँ जी, तो
मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो कुछ जानता हाँ जानती थी तो मैंने इसको निकाल दिया
थोड़ा
अब निकाल दिया, अब मैं पूरी तरह से छेद हो गई हूँ। हाँ? बंसी में जैसे कुछ नहीं है ना अटकाव के लिए, ऐसे अपने हृदय को खोखला कर दिया है।
तो ये बोला ना मैंने गुरु जी, हे गुरुवर आप तो ज्ञान गंगा के अथाह जल में निमग्न हो और आप ज्ञान के दिवाकर।
कौन सी पुस्तक में है
ये? मैंने पढ़ी है, बुक में पढ़ी।
तो सब बुकें ठीक नहीं है,
वो ठीक नहीं है।
नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो,
ये मैंने पुस्तक में
पढ़ो, भागवत में यदि हो तो वो मान लिया जाए,
भागवत में नहीं।
हाँ, तो ये ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, यहाँ पर सिद्धांत ठीक नहीं है।
हाई स्कूल वाली है जो छोड़ दिया एजुकेशन,
अब आगे बढ़ो, उस ज्ञान को उस पुस्तक को अब छोड़ दो, अब अथॉरिटी में भागवत रखो।
अच्छा,
बिना भागवत के सब तो ज्ञान से नहीं।
उसका लैंग्वेज ईजी है जो आप बता रहे हैं, उसका सिंपल लैंग्वेज में है,
हो सिंपल।
हाँ,
कृष्ण गोपियों को या मैया को बड़े प्यार से उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, जो
तो वास्तव हो गया,
हो तो गया, किंतु कितना सरल है,
कॉमन हो गया, ठीक है।
ये कितना सरल चीज है, अब इसे क्या सरल हो सकता है?
इससे सरल तो
नहीं,
इसे ठीक है, अब आ गया समझ में।
भागवत पढ़ो।
हाँ,
और ऐसे ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको पढ़ो, वो एकदम अमल प्रमाण है। हमने इस विषय में थोड़ी सी पुस्तकें लिखी हैं, दो चार अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उसको भी देखो, जो चैतन्य चरितामृत और भागवत के आधार पर हमने प्रवचन दिया है उसका ये है।
हाँ, वो तो
क्या क्या अच्छा होता
है,
सब लोग बैठे हुए तो थोड़ा सा चैतन्य चैतामृत सुमत भागवत उनकी भी सुना, चक्रवर्ती ठाकुर जी की सीता है जो रसिकों के द्वारा लिखी गई,
नरोत्तम प्रार्थना
है, ये चंडीदास का की पदावलियाँ हैं, विद्यापति की पदावलियाँ हैं, विशेष करके हमारे जयदेव जी का सबका भी अध्ययन किया जाए तो लोग, क्योंकि महापुरुष लोग हैं,
भगवान के चरणों के प्रति निवेदन किया जाएगा,
वो आप पढ़ेंगे वो अपने आप रास्ता पर ले सकते, उसमें ऐसा ही कुछ है। महाप्रभु जी दिन रात इसी का पठन पाठन और श्रवण कीर्तन करते हैं।
उसमें
नहीं समझे,
नहीं समझे।
देखो राम, हमारा नाम क्या है?
मधु।
मधु, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे बाप ने पूछा मधु कहाँ गई थी, तुम यहाँ आई है तो क्या उनको बतलाएगी?
महाराज जी से मिलने गई थी, तो उनको मालूम है ऑलरेडी ही
न्यूज़। अब देखो मधु तुम कहाँ गई थी, इसका क्या माने हुआ? कुछ मत, उस पहले से कुछ डिफरेंस आया,
क्रोध में आया, बोला आपने
ये कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि तू कहाँ गई थी, क्यों गई, हमारी इच्छा के विपरीत हो गई, मधु तू कहाँ गई थी, टोन में एक ये मधु तू कहाँ गई थी, इसका मतलब क्या हुआ?
प्यार से पूछा।
प्यार से नहीं, इसमें तान अच्छी बात हुआ है, तू जहाँ गई थी
तो ये व्यंग हो गया,
ये व्यंग हो गया। तो किसी भी शब्द में कौन सी पोटेंसीज में छिपी हुई है ये कैसे समझेगी, कौन से स्वर में क्या चीज है, कौन सा स्वर उसमें भरा पड़ा है, ये वही जानता है जिसने इसको लिखा, रिकॉर्डिंग किया है ना? अब उसको टोन को जानने के लिए जो उसमें कौन सा टोन है, मधु कहाँ गई थी, ये टोन कहाँ से तुमको मिलेगा, तू पढ़ तो लेगी पुस्तक,
वो तो मैं पढ़ लूंगी, वो तो मैं आराम से पढ़ लूंगी।
नहीं 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 बेटी, ये टोन को कैसे निकालेगी जिसकी टोन से लिखी गई।
हाँ ये मुश्किल है,
इसी के लिए गुरु की जरूरत।
करेक्ट, गुरु इज मोर इम्पोर्टेंट,
बिना गुरु के ये
ज्ञान नहीं है,
ये टोन नहीं मिलेगा,
टोन नहीं है,
इसलिए टोन के लिए गुरु जी।
गुरु जी का आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी एक एक पॉइंट को, जैसे कि वात्सल्य रूप बताया आपने, ये सारा जो रूप है वो मतलब आप क्लियर करते जा रहे हैं ना, वो हम जो पुस्तक पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, वो उसमें थोड़ा ना,
ये देखो कोई भी व्यक्ति पढ़ करके ये चीज को नहीं जान सकता,
नहीं
जान सकता, साधन होना चाहिए और उसके ऊपर में भगवान और गुरु की कृपा भी है, अनुभव करके बतलाएगा, अन्यथा वो पुस्तक पढ़ करके नहीं बतलाएगा।
हाँ, तो गुरु में गायन शैली और वक्तव्य शैली दोनों का ही समावेश है?
नहीं, उसमें है भगवान का भजन करते 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 भगवान का दर्शन पाया, उसकी अनुभूति हुई और तब वो गुरु के योग्य है। समस्त शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ में अनुभूति होनी चाहिए और साथ साथ में संसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति होनी भी चाहिए, ज्ञान उनके अंदर में अथाह ज्ञान है।
तो ये तो मैंने बोला ना कि ज्ञान गंगा के अथाह जल में निमग्न है।
सुनो, तो उसे नहीं होगा, एक और चीज बाकी रह गई,
ज्ञान के दीवार कर,
ज्ञान के दीवार को लांघ कर और तब उसकी प्रेम की अनुभूति करने वाला ये गुरु है।
अभी सुनते जाओ
धीरे धीरे, वही अभी नहीं, उसमें संसारिक वस्तुओं से, विषयों से, स्नेह से, ये सब जो है इनसे विरक्ति, यदि विरक्ति नहीं है तो समझो ये मोह है, अनुभूति नहीं है।
अब आगे समझ में?
अभी नहीं,
थोड़ा आया।
हाँ हाँ, सबसे ले जाकर क्या बोलिए,
भजन का स्वरूप क्या
है? एक होता है साधन, एक होता है भजन। साधन होता है हमारे अंदर में चीज नहीं, उसको पाने के लिए हम साधन करते हैं, उसको हम पाएंगे साध्य को। भजन पहली अवस्था में साधन है और दूसरी अवस्था में ये साध्य है। जब हम इस शरीर को छोड़ करके, मन को भी छोड़ करके, जब इसे अतीत होकर के कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे या उसी की भावना भी कर रहे हैं तो उसको भाव भक्ति कहेंगे, और जब वो भाव को एकदम प्राप्त हो जाएंगे तो उसी को प्रेमा भक्ति कहेंगे। इसे तब वो यथार्थ में भजन माने सेवन, उसमें सेवा आरंभ हो जाती है, प्रेममयी सेवा। साधन में अभी नहीं, साधन में क्यों अभी होता है, ऐसे करेंगे प्रभु हमको ऐसा दिया के चरणों की सेवा। और भजन में कुछ कुछ आने लगता है, और भजन की परिपक्व अवस्था में प्रेम होने पर समय में भजन माने सेवा।
एक
जैसे पेणु कड़ंतम अरविंद दलाय साक्षम बरहावसंतम अष्टम्ब सुंदरंगम संदर्प कोट कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। वेणु पड़ंतम, वेणु मधुर शब्द से गुंजार कर रही है, कंठोरिया बज रही है, कृष्ण के अधरों पर विराजित होकर के कृष्ण उसे बजा रहे हैं। वेणु पड़ंतम अरविंद दलाय साक्षम, अरविंद के जो दल हैं, कमल के जो दल हैं, दल किसको कहते हैं, कि पक्षी जो होती है, ऐसे ही दल होता है, इसमें सौगंध माधुर्य रस सब उसमें भरा है, इसलिए भ्रमर का समय उस पर आता, बल्कि गुलाब गुलाब पर भ्रमर नहीं आती, उसमें वो मधु नहीं है। ऐसे उनके नेत्र हैं, वेणु कणंतम अरविंद दलाय साक्षम बरहा वसंतम, मोर मुकुट को धारण किए, पतितांगम पतितांगम सुंदरा पतंत श्याम जैसे रंग उनका है, ऐसे जो गोविंद आदि पुरुषम गोविंद जो आदि पुरुष हैं समस्त ईश्वरों के जो ईश्वर हैं सबके कारण हैं और उनका कोई कारण और आदि नहीं है, इनका मैं भजन करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी की अभी लालसा है अभी साधन में, जिस समय उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो अब कहेंगे जब मैंने भजन कर रहा हूँ उस समय ये कहेंगे, उस समय आकांक्षा नहीं आकांक्षा वहां को पूर्ण होती, मैं भजन कर रहा हूँ सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर फजामी का अर्थ यह भी प्रणाम भी हो सकता है, ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं कि हमको ये चीज की प्राप्ति हो। यहाँ पर गोपियां कोई बात कहती हैं वहां पर प्रणाम प्रणाम या नंद बाबा कहते हैं कोई प्रणाम की कोई बात, जैसे एक साधारण ये ब्रह्मा जी यानी प्रणाम कर रहे हैं कितना सुंदर भाव है किंतु प्रणाम कर रहे हैं। और उसमें क्या है जैसे श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य वरह धातु प्रवाल नटवेशम अनुप्रतांते विन्नस्तफस्त इतरेण सुनान मभ्यम कर्णोत्पलाल कमोल कपोल मुखाद्य। दिग पत्नियां गई हैं कृष्ण को देखने के लिए, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का उस समय का रूप वर्णन कर रहे हैं। श्यामं हिरण्य परिधिं, हिरण्य मैंने होता है सोना, कच्चा सोना एकदम गलित सोना, ऐसा ये पीताम्बर को धारण किए हुए हिरण्य पर वनमाल जब रहा वनमाला को लंबी सतरंगी और उसे सुंदर सुगंध लग रही है और ये वहाँ पर गुंजार कर रहे हैं। यहाँ पर मोर मुकुट को उन्होंने सुगंग रूप में धारण किया है, धातु प्रवाल धातु जैरिक धातु मदमत्त हस्ती साव जैसा या सिंह साव जैसा सुंदर सुंदर कोमल लाल लाल पत्तियों को कहीं यहाँ पर लगा रखा है कभी अपने केस में लगा रखा है, अलहड़ जैसे बेपरवाह, कभी एक कनेर का फूल लेकर के यहाँ रख दिया कभी इसको एक तरफ में फिर इसको दूसरे तरफ में, कोई चिंता नहीं मंद मुस्काल खेल रही है उनके अधरों में। ऐसे कृष्ण जो है बरहा श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेशम नटवर्ग नटवेशम अनुप्रतान से उसके पीछे 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 मत होकर के भौरे गुंजार करते हुए पीछे पीछे जब कृष्ण चलते हैं तो वो भी चल रहे हैं अनुप्रतान से विन्यस्त हस्त इतरेण एक तो ऐसे और दूसरे से कमल की का फूल ले लिया है और उसको नचा रहे मेरा भी हृदय नाच रहा है और जो देख रहा है वो जो आई है देखने के लिए उनका भी हृदय उससे
नाच रहा है।
देखिए इसमें प्रणाम इत्यादि का कोई शब्द नहीं, नट और बपू में भी उसमें भी बड़ा नट और बपू उसमें भी प्रणाम, क्योंकि ये सिद्ध है प्रेम में पगी हुई है, कोई भी सखा कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, कोई भी सखा कोई भी सखी आकर के प्रणाम करेगी कृष्ण को
नहीं,
जो सदा मैया प्रणाम करेंगे नंद बाबा, बल्कि कृष्ण सबको हाथ जोड़ेंगे नंद बाबा की जूती पकड़ करके ले आएंगे, गोपिया का उनको आदेश देंगे जैसे जरा नाचो तो देखें, ऐसे नाचने से नहीं होगा एक कमर पर हाथ रहे और दूसरा यहाँ और जरा थे थे करके नाचो तो इतना सा छाछ दे और नाचने लगते गोपियों को प्रणाम करने की क्या जरूरत, कथाओं को ब्रज के लोगों को प्रणाम जो वृद्ध लोग हैं उनको आशीर्वाद से प्रणाम देखना करते ब्रह्मा इत्यादि जो आधिकारिक देवता हैं ये यहाँ पर नारायण को प्रणाम करो राम को भी प्रणाम करो दंडवत करो मीटिंग इस भगवान को करो तो उनको कृष्ण के यहाँ प्रणाम करने वालों का जरा दूर इनको सीमा से बाहर करो प्रणाम करने वालों को, यदि कोई हमको कृपा नदी का है तो उसको बाहर कर दो पकड़ कर
कृपा नदी
ये प्रेम राज्य है ना, कृपा नदी किसको
ऐश्वर्य नहीं है
ऐश्वर्य होने पर भी वो माधुर्य के द्वारा परिमंडित है, ऐश्वर्य बहुत है किंतु वैसे हो गया है जैसे कि एक मन दूध में कितना सा एक कोई छोटा सा तीन का उसमें पड़ गया हो, जो सब जबकि दूध गर्म हो रहा है तो नीचे में चलता है, कभी कभी दिखाई देता है, वो फिर अवस्था में गोपियां कभी होता होगा उसका देख। आप तो देवती के पुत्र हैं, ताना के से विकास कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदला है, कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं मानते, कृपा निधि नहीं कहेंगे, हे करुणा सागर ये सब मिल कर उनका प्रेम।
फिर ये राम के उसमें रामायण में तो मैंने पढ़ा,
और रामायण वहाँ तक पहुँच नहीं पाता,
रामायण में तो मैंने पढ़ा
वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, रामायण के लिए ठाह नहीं लगा, रामायण ठाह नहीं लगा सकता भागवत का, भागवत के एक अंश से रामायण बना।
ऐसे मधुर भावों की उत्पत्ति मन में कैसे हो? ऐसे जो मन जो इसमें चित्रण करता रहे ऐसे
वो गुरु के चरणों में ही होगा,
यही तो मुश्किल है। मैं एक चीज नहीं बता सकता,
वो ऐसे नहीं देगा, उसकी कुछ लेता है, कुछ चीज लेता
तो
है,
आप ले लीजिए
ऐसे नहीं देगा, कुछ रख लेगा,
सब कुछ तो
सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा, किंतु स्विच अपने हाथ में रखेगा,
ठीक है हमारा स्विच आपके हाथ में।
वो कुछ बिना किए बिना कुछ उपहार लिए वो नहीं देगा, वो लिखा है भागवत में। वो श्लोक है तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छेत समझ प्राणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तद विज्ञानार्थम एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, ज्ञान माने किसी चीज का ज्ञान, कैसे ये चीज है क्या चीज है ये तो हुआ ज्ञान, और उसी की अनुभूति जब होती है तब तो इसको विज्ञान कहते हैं। पानी पीने से प्यास बुझती है, हो गया, जब पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, ये अनुभूति थी। पानी पीने से प्यास बुझती है, जब इसको सुनते हैं तब ये ज्ञान है, है? जब अनुभूति से पानी पिया प्यास बुझ गई तो इसको कहते हैं विज्ञान। वैसे हम समझते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये प्रेम है, सुन रहे हैं किंतु अनुभूति नहीं हुई तब तक वो विज्ञान नहीं हुआ। तब विज्ञानार्थ उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभूति चाहिए, उस चीज को पाने के लिए तब विज्ञानार्थम सब गुरु एवं अभिगच्छे, उसको गुरु के यहाँ जाना ही पड़ेगा, अवश्यम में एव, खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ कभी आप ही मत जाओ, समक पान हाथों में ले जाओ, क्या ले जाओ, समित, समित माने होता है यज्ञ करने की लकड़ी जो होती है समीधा, उसको ले जाओ, तुम समित बन जाओ, इसका ये तात्पर्य है, समित बन जाओ, समित लेकर के नहीं जाना है, समित बन करके जाना है, क्या होगा स्वाहा उसमें होगा, स्वाहा माने क्या, स्व स्व माने
मैं
मेरा जो कुछ है सब कुछ, आत्मा इत्यादि सब कुछ, हाँ माने अर्पण करना, गुरु जी के पास में ये समझ ही ये लेकर के जाओ, जो मेरा जो कुछ है ये
सब
भाव
कुछ आपका है, नहीं प्रेमांजलि भी तो कह सकते हैं,
सब कुछ है, ऐसा मत सोचो,
प्रेमांजलि वर्ड नहीं
आएगा,
जो कुछ है अर्पण कर दो, ये अर्पण होना बड़ा कठिन है, कहना ये जब कुछ थोड़ा सा भी आंशिक भी यदि वो होगा तब तो इस उपहार को गुरु जी स्वीकार करते हैं, ऐसी दुर्लभ वस्तु देंगे नहीं तो नहीं देंगे, पात्र चाहिए ना, बाघिन का दूध ऐसे बर्तनों में फट जाता है, सोने के बर्तन में वो ठहरता है, उसके लिए सोना का पात्र, तो ये प्रेम भक्ति भी रखने के लिए वैसा पात्र होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। इसलिए कहते हैं समीप पाणी सुप्रियम, इस समीप को माने वो भावना को ले जाओ जिसमें मैं अपने को उसमें अब मेरा कुछ नहीं रह गया। जैसे जिस रूप में चलाएंगे इसी को कहते हैं शिष्य। शिष्य माने उनका शासन, उनका जो कुछ है सबको सहने का नाम है। और गुरु तब ऐसे को क्या करेगा, बजाएगा, ठोकेगा भी, देखेगा देखेगा कुछ छेद है कि नहीं, कि क्या है, ऐसे ही रस भर देगा
वो परख के जांच करेंगे,
जांच करेगा, देखेगा, सुनेगा, धीरे धीरे देगा, देख करके पहले देखेगा, पहले पानी देगा, पहले एक बार रस नहीं दे देगा, पानी देगा, देखेगा जो कहीं छिद तो है, सब धीरे धीरे देखेगा, जब ठीक होना होने लग गया है तब धीरे धीरे। ये उस भागवत का श्लोक है, समित लेकर के जाना, गुरु को दक्षिणा नहीं देने से, नहीं देते यही समित की दक्षिणा देनी। जब मैं आया घर से तो गुरु जी के लिए कहा, हमारी पत्नी पर हमारा स्नेह, मैया के प्रति हमारा ममता, पिता के प्रति हमारा श्रद्धा थी, और सभी लोगों के प्रति, धन के प्रति हमारा कुछ लोभ था, यह सबको उनसे निकाल करके आप
Thank you.
हमने आज जो वहाँ वार्तालाप उन लोगों से हुई उसका रिकॉर्ड करके सुनेंगे आप, बहुत कुछ सहायता मिलेगी। अरे अभी हम लोग माधुर्य कादंबरी पढ़ रहे थे ना, तो उसका प्रसंग कुछ छूट गया था। हम लोग भावावस्था तक कुछ कर रहे थे, उठाया था श्रद्धा से। अभी हम लोगों ने उठाया था श्रद्धा से, उसके पहले से और उठाया था किस चीज से, भक्ति लता का बीज से। भक्ति लता का बीज किसको कहा? कृष्ण की सेवा करने की हृदय में अभिलाषा या वासना हो भीतर में, तो ये भक्ति लता का बीज है। यही पुष्ट होने पर श्रद्धा ऊपर से कुछ दिखती है। श्रद्धा किस लिए? उस चीज को पाने के लिए जो साधन है उसमें श्रद्धा। किसमें श्रद्धा होगी? गुरु जी के चरणों में, जिनसे ये भक्ति लता के बीज मिली है। उन शास्त्रों में जहां से उसको ये चीजें मिली हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखो। प्राण जाने पर भी अपने विचारों को अब नहीं बदल सकता, किसी भी कीमत पर, किसी के कहने से, किसी के मना करने पर, यहां तक कि कोई कहे वो दो काजी के सिपाही लोग खड़े हो गए हरिदास ठाकुर को तलवार से काट देंगे यदि नाम कृष्ण किया, कहते ये क्या की? अरे गला ही तो काटेगा, एक एक बोटी हमारा काट दो इतना इतना करके, तभी खंड खंड जदि जाए, खंड खंड जदि हो जाए देह प्राण, देह और प्राण शरीर सब कुछ चला जाए, मैं अब नहीं छोड़ सकता, इसके लिए मैं सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार हूं। तब ऐसी दृढ़ श्रद्धा का नाम, विश्वास का नाम श्रद्धा ऐसी तैसी नहीं है। कृष्ण की सेवा की वासना जबकि उसमें हो जाती है पक्की, तो इसका ये एक लक्षण है, ऐसा ही दृढ़ विश्वास होगा। अब हम लोग बैरोमीटर दे करके ये वजन करें, देखें हमारे अंदर में कितनी श्रद्धा है। अब इसी पर विचार करें, कहे नहीं नहीं आगे मत करो, ये उनकी बात मत सुनो, बहुत से विघ्न बाधाएं आएंगी, किंतु ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है अब वो मानेगी। गंगा की धारा जब निकली वहां से गंगोत्री से तो रुकेगी कहीं, वो तो समुद्र तक जाएगी ही, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं, ऐसे उसमें विश्वास का। यहां से हमने आरंभ किया, इसके बाद में अनर्थ निवृत्ति की बात बतलाई, बहुत से अनर्थ हैं। अब अनर्थ है कि नहीं साधारणों को पता नहीं चलेगा, किसको पता चलेगा? जो कुछ अनुभव होगा, हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर में इतना अनर्थ है। आप लोग शायद बहुत कम आदमी हैं जो अनुभव करें, साधारण आदमी समझे मैं तो बहुत सीधा सा एकदम स्वच्छ हूं, हमारे अंदर में कुछ नहीं है, किंतु फल से कार्य का परिचय होता है, फले न परिचयते, परिचय होता है फल से। एक पेड़ में पेड़ हमने लगाया, मैंने गुठली लगाई, उसमें अंत तक कभी फल ही नहीं लगा, तो क्या सोचेंगे? ये ठीक आम की अच्छी गुठली नहीं है, नहीं तो लगता जरूर। एक केले का पेड़ लगाया और उसमें से केला कभी नहीं निकला, न पका, आए तब तो फल ही नहीं आया। कुछ ही लगाएंगे तो उसका फल तो आएगा, इसी तरह से फल के द्वारा परिचय होगा। क्या कृष्ण नाम इतना मधुर है, आकर्षक है, हृदय तक के तह में पहुंचने वाला है, एक बार कृष्ण नाम कोई यदि कहे तो चित्त गदगद हो जाएगा, आंखों में अभिनव अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे, चित्त द्रवित हो जाएगा, रोमांच और पुलक होगा। यह हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो समझो कि तब आचे तहाते अपराधे रखो, तब समझो कि तुम्हारे अंदर में अनर्थ है, अपराध। एक कृष्ण नाम का ये फल है जो प्रेम देगा, किंतु हम लोगों को इसका लक्षण नहीं आ रहा है। चित्त द्रवित नहीं होता, पुलकित नहीं होता, बल्कि कृष्ण नाम सुनने से करने से नींद आ जाती है, तो क्या समझो? है अनर्थ, है कुछ गड़बड़ी हमारे प्रेम में, हमारे नाम करने में, नहीं तो जरूर आता। नारद जी यदि कृष्ण नाम करेंगे तो कैसी स्थिति होगी? एकदम भाव में अकुलित व्यक्त हो जाएंगे। गोपियों का देखेंगे, किसी भक्त का, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जी जब नाम करते हैं तो एकदम भावुक बन जाते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो तब तो ऐसा समझो कि हमारे कोटि कोटि जन्मों के अभी कुछ अपराध हैं, अनर्थ भी हैं, त्रुटियां हैं, विघ्न बाधा है, उसको दूर करने का प्रयत्न करें। कैसे दूर होगा? इसके लिए भी हमने बताया, निरंतर हरिनाम करना है, निरंतर सुख वैष्णव के साथ में जाना है, सुनना है। जो अनर्थग्रस्त व्यक्ति हैं, जो खुद बंधन में है, दूसरों का बंधन कैसे खुलेंगे? जिनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, अनर्थों से बंधे हुए हैं, माया में बंधा हुआ है, वो किसी का संसार कैसे खोल सकता है, आसक्ति कैसे दूर कर सकता है? ये असंभव है। इसके लिए जिसके अनर्थ दूर हो गए हैं, ऐसे वैष्णवों का, भक्तों का संग करो, और उन्हीं के मुख से हरि कथा सुनते 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 संभव है जो कृष्ण कथा के प्रति लोग उत्पन्न हो जाए, जिसके लिए अभी एक घंटा तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग उत्पन्न हो जाए। अनर्थ जो है दूर हुआ, इसका यही पहला लक्षण है, लोग उत्पन्न हो जाए, और साथ ही साथ में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। पहले जो परिश्रम होता था, नींद आती थी ये स्मरण करने में, और उससे थोड़ा सा कम आता था श्रवण करने में, स्मरण श्रवण और कीर्तन, कीर्तन में नींद नहीं आएगी, सारी श्रवण में नींद आनी आरंभ होगी, और स्मरण जब करने के लिए बैठेंगे तो एकदम लय प्रलय इत्यादि हो जाएगा। एक आदमी को स्मरण में ऊंघ रहा है, जो मंत्र गुरु ने दिया है उसमें तो ऊंघ रहा है, और यदि उसी समय में कोई हरि कथा रसी लिख आ रहा है तो उसको नींद दूर हो, किंतु उसमें भी यदि किसी को नींद आ रही है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे हाथ करो और नाचने लग जाओ, बड़े प्रेम के साथ में कीर्तन करने लगाओ, देखो जो भी बोल। किंतु बहुत से लोगों को हमने देखा है जो कीर्तन में बैठे और मृदंग पर ताल पड़ा ऐसे भी लोग हैं, बहुत अनर्थ है, घोर अनर्थ है। इन सबको छोड़ने के बाद में रुचि आएगी, अब उस समय परिश्रम नहीं होगा। जहां थोड़ी सी कोई उद्दीपना हुई और हरि कथा एकदम हरि कीर्तन एकदम अपने आप, कीर्तन मृदंग के साथ ही कीर्तन नहीं, जीवा के स्पंदन मात्र से ही कीर्तन है, कोई भी कथा भगवान का रूप ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये कीर्तन। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, वही कीर्तन के सबसे बड़े अधिकारी थे, वो कीर्तन कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जैसा कीर्तन करने वाला आज तक पैदा हुआ कि नहीं? हाँ, उनके बाप थे, और उनके बाप के गुरु कौन थे? ये लोग सब है, सुख गोस्वामी भी थे, इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हुए, उनसे भी अधिक बहुत ऊंचे। सुखदेव गोस्वामी को ले लो और रूप गोस्वामी को लो, दोनों में किसकी कथा रसीली होगी? रूप गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से श्रेष्ठ है, ऐसा समझो, ऐसा मत समझो कि